हम लोग अपने अमल का जायज़ा लें। पहली बात यह है कि वो औरतें जो आपके घरों में आती हैं काम करने, उसको और अपने आप को तकाबुल में रखें कि मेरे में और उसमें क्या कमी है। उसका भी वही गोश्त है जो मेरा गोश्त है, उसका भी वही दिल है जो मेरा दिल है। आखिर मेरी क्या खूबी थी कि अल्लाह ने मुझे एक घर में बेगम साहिबा बना के बिठा दिया और उसको मासी बना दिया। कितनी बसों में लटकती भी वो आती है। आखिर मेरा इसमें क्या कमाल है कि अल्लाह ने मेरे हाथ में घर की चाबियां दे दी, गाड़ी भी मेरे पास है, माल भी है मेरे पास, बैंक की चाबियां भी हैं और जो कुछ भी माल है। क्या मैं अपने इख्तियार से इतनी दौलत में आई? पहले उसको इंसान समझें, उसका उसी तरह इस्तकबाल करें जैसे आप ये चाहते हैं कि आपका इस्तकबाल किया जाए। लेकिन ये बात हमें समझ क्यों नहीं आती? क्योंकि हमने कभी इस दर्द को चखा नहीं। और अल्लाह ताला महफूज रखे कि ज़िंदगी में कभी भी शाही के बाद फ़कीरी ना आए। लेकिन ये बड़ी ही तलख होती है, क्योंकि फ़कीरी के बाद जब शाही आती है ना, तो इंसान को वो बुरे दिन याद रहते हैं, लेकिन जब अच्छे दिनों के बाद बुरे दिन आते हैं तो चीखें निकल जाती हैं। इसलिए यहाँ एक साइड पॉइंट भी बताती हूँ कि अपने बच्चों की तरबियत में इतना ज़्यादा उनको खुद मुख्तार और ख्वाहिश परस्त ना कर दें कि खुदा न खास्ता कल आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसा दिन आ जाए कि जॉब चली जाए या कारोबार मान पड़ जाए या उनको ऐसी जगहों में जाना पड़े कि जहाँ उनकी ख्वाहिशात नहीं पूरी होती तो वो बेचारे डिप्रेस ना हो जाएं। लेकिन सोचिए कि अल्लाह ने हमें दिया। फिर उसके बाद दूसरी चीज़ देखिए कि वो औरत किसी ज़रूरत के लिए आई है। दो चीज़ें होती हैं, आपकी ज़रूरत है काम, ठीक है, और उसकी ज़रूरत है पैसा। आप चाहते हैं कि काम बेहतरीन हो और वो क्या चाहती हैं कि जब हम घर से निकले हैं तो कम से कम हमारी रोजी रोटी तो चलती रहे। जब उनकी तनख्वाह रखे ना, तो ये देख लें कि अगर तो ये सिर्फ आप ही के पास आ रही है ना, तो फिर कम से कम इतनी तो हो कि इसका वक्त चल जाए। बाज़ दफ़ा होता है हर 2-4 दिन के बाद तो कहती हैं बाजी कुछ एडवांस दे दें, दे देते हैं, 2-4 दिन गुजरे फिर एडवांस दें। आपकी मासी अगर इस तरह का तकाजा 1 से 2-4 बार करे ना, तो उसके बाद आप ये कहने के बजाय कि ये क्या हर वक्त मांगती हो, ये सोचें कि लगता है कि ये पैसे इसके लिए पूरे नहीं है। तो बजाय इसके कि वो हर 2-4 दिन के बाद आपकी डांट सुने और आप यूं पटख के नोट उसकी तरफ फेंके, उसके पैसे कुछ बढ़ा दें। वैसे भी तो कुछ सदका करते ही हैं ना, कुछ वैसे भी तो अल्लाह के लिए देने मत दें। कुछ लोगों के दिल में इतना बुखल होता है अपनी ज़ात पे जो खर्च होता है ना, यानी जैसे ये मुलाजिम अब हमारी ज़ात पे ही लग रहे हैं ना, या अपनी ज़ात के लिए कोई ऐसी चीज़ खरीदनी जिससे आपको फ़ायदा हो रहा है या कोई ऐसी जगह जहाँ आप खुद फ़ायदा उठा रहे हैं, वहाँ देने के मामले में बड़े बखील होते हैं। लेकिन बाहर जाते हुए फ़कीर पे रहम आया, उसको 50 का नोट दे दिया, फलां को दे दिया। याद रखिए, हमारे अच्छे सलूक के सबसे ज़्यादा मुस्तक वो लोग हैं जो हमारे करीब हैं और जिस जगह से, जिस चीज़ से, जिस इंसान से हमें फ़ायदा पहुंचता है ना, उसको देने में हमारा दिल कैसा है, ये है हमारा असल मुकाम। और जो दूसरा था ना, वो कुछ और है जिसका तذکرہ अगली आयतों में आ रहा है। और खुदा न खास्ता अगर किसी मासी ने हमसे कुछ एडवांस ले लिया कि भाजी 5,000 दे दें और मैं आगे किस्तों में दे दूंगी वापस, और बिलफर्ज़ आज आप उसको 5,000 दे रहे हैं, कल ही उसके आने में देर हो गई, तो पहला जुमला ज़ुबान पे क्या आता है? भाग गई। और अगर वो छुट्टी कर ले या उसकी बीमारी है, तब कहना देखा ये लोग होते ही ऐसे हैं, ये एहसान फरामोश है। फिर आपकी और मेरी दोस्तें और हमारे घर वाले भी लुकमे देते हैं और सर पे चढ़ाओ और साथ बिठा के उसको खिलाओ। ये सारी चीज़ें मन और रज़ा में आती हैं। इंसान समझे उनको, उनकी मजबूरी को समझे। खाना तो देना ही है ना। आप देखिए कि एक खाना है वो जो हम खाते हैं, और मैं पूरे शऊर से कह सकती हूँ कि हम जो खा रहे होते हैं ना, उससे भी बेहतरीन चीज़ रात के खाने के लिए बची हुई होती है। ऐसे ही है ना, हमारे घरों में फ्रूट आता है, क्रेट्स के एतबार से आता है ना, अल्लाह ने फरावानी दी है, जितना मर्जी खाएं। आप उसमें से कुछ अपनी मासी को या अपनी मेड को या अपने मुलाजिम को, कोई भी जहाँ भी हो सकता है, कोई कोई ड्राइवर हो सकता है, उसको दे रहे हैं। क्या देते हैं? चुन के वो देते हैं जो सबसे छोटा हो, जो गलने वाला था या गल चुका है वो उसको दे देते हैं। ज़रा अगली सारी आयतों को पढ़ लेते हैं तो फिर देखेंगे कि इस पे हमारा अमल क्या है, या अगर ये बात पहले की है तो आयतों को पढ़ते हुए अपना मुहासबा करना है कि वो गरीब जिसको मिलना ही एक है, उसको ढंग का तो दें। बस लोग खुद नहीं देते, बच्चों को खूब भर भर के प्लेटें दे दी, और जब बच्चे ने आधा खाया आधा छोड़ा एक फेंका तो सारा जमा करके मासी को कहते हैं अब तुम खा लो। आप एक लम्हे के लिए सोचें, दिल तो उसका भी है ना, ठेस तो उसको भी लगेगी। अल्लाह ताला इस पूरे इन दो रुकू जो हमारे लेसन में है आज के, आप देखेंगे कि अल्लाह ताला हमें इंसान बनना सिखा रहा है। खुलासे के तौर पे पूरी आयतों को करते हैं और फिर जो बातें रह जाएंगी उनको बाद में अपने मुहासबे के तौर पे करते जाएंगे, और साथ ही साथ अपने लिए अमल की बातें भी नोट करेंगे कि अल्लाह तू हमें दूसरों का दिल दुखाने वाला ना बना और हम तेरी निगाहों में भी बड़े बन सकें। खुद तो अपनी निगाहों में बहुत बड़े हैं। देखिएगा आयत नंबर 264 को, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए लोगों जो ईमान लाए हो। अल्लाह ताला ईमान की निस्बत से पुकारते हैं। ला तुब्तिलू सदकातिकुम बिल मन्नि वल अज़ा, न जाया करो अपने सदकों को मन और ईज़ा देकर, यानी एहसान जतलाकर और तकलीफ़ देकर। पिछली ही बात की तकरार है, अल्लाह ताला दोबारा इसी बात का एहसास दिला रहे हैं कि देखो जो अल्लाह के रास्ते में देते हो तो अब एहसान जतला के उसको ज़ाया ना करो। ये ना करो कि दे तो दिया है और बाद में फिर उसको तुम ज़ाया करो। ये क्या है? इससे मुराद ये है कि जो तुमने दिया है अब उसको देने के बाद अपने दिल में तंगी महसूस ना करो, और दूसरी बात यह है कि देने के बाद जिसको दिया है उसको दुख ना दो, उसको अपनी बांदी या अपना गुलाम ना समझो, उसको ये ना सोचो कि अब ये तुम्हारा जर खरीद हो गया। बस लोग ज़कात की रकम अपनी ही मासियों में बांट देते हैं और उन पर रोब ये रखते हैं कि हम तुम्हें तनख्वाह के अलावा भी तो इतना देते हैं, और इसका नतीजा क्या हम चाहते हैं कि अब वो हमारे आगे बिल्कुल बोल ही ना सकें। तो कहा ऐसा ना करो, तुम्हारे माल ज़ाया होंगे। पिछली आयत में अल्लाह ताला ने माल को देने के तरीके बताए कि कैसे दो, क्या करो, किस तरीके से ये माल तुम लोगों तक पहुंचाओ, और अब बताया जा रहा है कि वो चीज़ें जिससे माल ज़ाया हो जाता है। पीछे बताया था कि दाना ज़मीन में डालेंगे तो फसल पकती है, अब बताया जा रहा है कि बाज़ दफ़ा फसल उगने के बाद भी ज़ाया हो जाती है। उसकी कुछ वजूहात होती हैं और उन वजूहात में पहली चीज़ मन है, दूसरी चीज़ अज़ा है, और अब तीसरी चीज़ आ रही है कल्लज़ी युन्फिकु मालहु रिया अन्नास, मानिद उस शख्स के जो खर्च करता है अपने माल को लोगों को दिखाने के लिए। ये तीसरा दीमक है। आप अगर फसलों की ज़ुबान में बात करें ना, तो फसलों पे मुख्तलिफ किस्म की सुंडियों का या जानवरों का, कीड़ों का हमला हो जाता है, तो आप कह सकते हैं कि फसलों को तबाह करने वाली ये वो तीन चीज़ें हैं, और एक और आगे भी आ रही है कि जिसकी वजह से खड़ी फसल तबाह हो जाती है, मन, ईज़ा, और तीसरी चीज़ है रियाकारी, लोगों को दिखाने के लिए, बड़ा बनने के लिए। इसमें भी दो मानी बनते हैं। रिया में एक रियाकारी क्या है कि लोगों को देते हो ताकि लोग तुम्हें सखी कहें, तुम्हें बड़ा कहें और कहें कि वाह तुमसे ज़्यादा भी कोई नेक शख्स हो सकता है या तुमसे भी ज़्यादा कोई सखी है। और दूसरा मनी रियान नास का क्या होता है कि अल्लाह के रास्ते में देते वक्त तो 100 दफ़ा सोचते हो, लेकिन जहाँ दिखावा मकसूद हो, जहाँ तुम्हारी ज़ात बड़ी हो, जहाँ तुम्हें रस्मों के नाम पे, शादियों के नाम पे, बड़े बनने के नाम पे खर्च करना हो तो खूब खर्च करते हो। और इसको समझना हो तो कोई एक शादी का फंक्शन देख लें, कोई मंगनी का फंक्शन देख लें, कोई पार्टी देख लें, वो चीज़ देख लें कि जिसमें कोई बंदा अपनी ज़ात को बड़ा कर रहा होता है। घरों की डेकोरेशन देख लें, कार्ड्स की डेकोरेशन देख लें, शादी का खाना ही देख लें, दुल्हन का जोड़ा ही देख लें, यानी जिसमें तुम्हारी वाह वाह होती है, जिसमें तुम बड़े बनते हो, उसके अंदर तुम कैसे खर्च करते हो ये तुम खुद देख लो। तो दोनों मानों में बात क्या है कि जिसने अल्लाह के सिवा के लिए खर्च किया, यानी अपने नाम को ही बड़ा करने के लिए खर्च किया, तो ऐसा शख्स जो है फिर अपने माल को ज़ाया कर रहा है। फिर अगली चीज़, वला युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर, और नहीं ईमान लाता अल्लाह पर और दिन आखिरत के, यानी रियाकार जो है वो दुनिया में ही सारा फ़ायदा लेना चाहता है अपने खर्च का, शोहरत चाहता है, बड़ाई चाहता है, लोगों से न्याजमंदियाँ करवाता है ताकि उसको दुनिया में मिले। तो दर हकीकत ये वो शख्स है कि जिसका इस बात पर ईमान ही नहीं कि कल अल्लाह ताला भी मुझे मेरे इस खर्च का कुछ बदला देगा, یعنی یہاں اللہ پر ایمان وہ ایمان نہیں ہے کہ اللہ کو نہیں مانتا، بلکہ ولا یومن باللہ سے مراد ہے کہ ایسا شخص اس بات کا یقین نہیں رکھتا کہ میرے اس خرچ کو اللہ نے دیکھ لیا، والیوم الاخر اور آخرت کے بعد یعنی قیامت کے بعد آخرت میں مجھے اس کا اجر دے گا۔ اب اللہ تعالیٰ یہاں ریاکار کی مثال ایک تمثیل سے دیتے ہیں، کیسے؟ کا مثلی، جیسے مثال صفوان، چٹیل پتھر۔ صفوان کا لفظ دو طرح سے آتا ہے، یا تو یہ جمع ہے یا پھر یہ واخد ہے۔ کس طرح جمع ہے؟ صفوان جمع ہے صفوانہ کی، جیسے رضوانہ لکھتے ہیں نا اسی طرح سواد سے لکھ لیں صفوانہ، یا پھر یہ واحد ہے اور اس کی جمع ہے صفی۔ کہتے ہیں ایسے پتھر کو جس پر کوئی چیز نہ اگے۔ صفوان ایسا پتھر، ایسا چٹیل پتھر جس پہ کچھ بھی نہ اگے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ صفوان ایک ایسا چٹیل پتھر ہے، علیہ تراب، اس پر مٹی ہے۔ تراب جو ہے نا ڈسٹ کو کہتے ہیں، سوکھی مٹی جو آ جاتی ہے اوپر سے خود ہی اڑ کے ادھر ادھر سے۔ اب کیا ہوا؟ فَأَصَابَهُ، پس پہنچا اس کو وابلن۔ وابل کہتے ہیں تیز بارش کو، اردو میں لفظ وبال سنا ہوگا آپ نے، بہت زیادہ جوش کے ساتھ کسی چیز کا نکلنا اور آنا آتا ہے۔ یہاں مراد یہ ہے کہ ایک پتھر تھا، چٹیل تھا، اس پہ مٹی جم گئی تو پتہ نہیں چلا کہ نیچے سے پتھر کیسا تھا، لیکن حقیقت میں وہ بالکل بنجر تھا۔ پھر اوپر مٹی پڑ گئی، مٹی کے اوپر تھوڑی سی بارش پڑی تو کیا ہوا؟ فَتَرَكَهُ صَلْدَا، اور اس کو بالکل سوکھا، سلد چھوڑ دیا، ایسا چھوڑ دیا جس کے اوپر کچھ بھی نہ ہو۔ سلدن کہتے ہیں ایسی زمین کو جس پر کچھ نہ اگے، جو گنجا سر ہوتا ہے اس کو راسل سلد کہتے ہیں عربی میں، کہ اس کے اوپر بال نہیں اگتے۔ اب کیا ہوا کہ اس کو بالکل ویسا ہی کر دیا جیسا کہ وہ کچھ نہیں تھا۔ لَا يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ، نہیں وہ قدرت پاتے کسی چیز پر، مما کسبو، جو اس نے کمایا، یعنی جو محنت کی تھی، جو خرچ کیا تھا، وہ کچھ بھی نہیں آیا، بارش کے پانی کے ساتھ سب کچھ بہ گیا۔ واللہ لا یہدی القوم الکافرین، اور اللہ تعالیٰ کافر قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ یہ مثال سمجھنے کے قابل ہے؟ اس مثال میں کچھ ضمائر لکھیے گا۔ وابل یعنی بارش سے مراد ہے خیرات، صدقہ، چیریٹی، جو بھی آپ اللہ کے راستے میں کرتے ہیں۔ چٹان سے مراد ہے نیت، اور وہ جذبہ جس سے اللہ کے راستے میں خیرات کی گئی یعنی خراب ہے، بالکل بنجر، بری نیت، برے دل سے دیا۔ اور مٹی کی جو ہلکی سی تہ ہے نا، جو اس کے اوپر تراب ہے، تراب ہے وہ معمولی سی نیکی جو کی، ظاہری شکل نیکی کی، دینا پڑا تھوڑا سا وہ دیا، یعنی نیکی کی وہ معمولی سی تہ جس کے نیچے نیت کی خرابی چھپی ہوئی ہے۔ اب سوچئے ذرا، ایک شخص تھا، نیت خراب ہے، وہ پتھر ہے، اوپر تھوڑی سی مٹی پڑ گئی نیکی کی، یعنی وہ تھوڑا سا صدقہ خیرات جو دیا دکھانے کے لیے، اوپر سے پڑ گئی بارش۔ بارش کیا ہے؟ اصل خیرات۔ تصور میں لائیں اس چیز کو، پتھر کے اوپر جب مٹی جم جاتی ہے، کچھ عرصہ پتہ نہیں چلتا کہ نیچے کیسی زمین ہے، لیکن جو ہی بارش ہوگی نا تو وہ مٹی اترے گی تو پتہ چلے گا، او یہ نیچے تو پتھر ہے، ہم تو سوچ رہے تھے کوئی زرخیز زمین ہوگی، کچھ اس سے نکل آئے گا۔ اب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ بارش کا عام طور پہ معاملہ کیا ہوتا ہے کہ جب بارش پڑتی ہے نا تو سبزہ اگتا ہے، ایسے ہی ہوتا ہے نا، کہیں بھی دانہ پڑا ہوتا ہے تو وہ اگ جاتا ہے، کھیتی نشو و نما ہوتی ہے۔ لیکن اس شخص کا معاملہ کیا ہوا کہ چونکہ اس کی نیکی خراب تھی، تو بارش کی وجہ سے کھیتی اگنے کی بجائے اس کی نیت کا جو کھوٹ تھا وہ ظاہر ہو گیا، اور وہ جو تھوڑی سی مٹی بھی پڑی تھی نا، کوئی 5, 10, 20, 25 بھی جو اس نے برے دل سے خرچ کیے تھے، لا یقدرون علی شیء مما کسبوا، وہ بھی گیا۔ عام حالات میں کیا تھا؟ ایک دانہ ڈالا زمین میں، سوچئے، اچھی نیت سے، اچھی کمائی کا، بارش پڑی وہ پھوٹ کے 700 دانوں میں اگ گیا۔ یہ بالکل اس کا اپوزٹ ہے کہ اس کا اصل بھی ضائع گیا۔ اور واللہ لا یہدی القوم الکافرین، اللہ تعالیٰ کافر قوم کی رہنمائی نہیں کرتا، اس کی ہدایت نہیں کرتا، یعنی کہ یہاں کافر سے مراد کون سا کافر ہے؟ ناشکرا، منکر نعمت، کہ جس کو اللہ نے دیا تھا لیکن اس نے اللہ کی رضا میں دینے کی بجائے دوسرے کو تکلیف دینے کے لیے دیا، یا لوگوں سے لینے اور لوگوں کو سب کچھ دکھانے کی نیت سے کیا، نتیجہ کیا نکلا کہ اس کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں آیا، اور یہ ہے مثال اس شخص کی جو لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کرتا ہے۔ دیکھیے کہ لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کرنے کو اللہ قبول کیوں نہیں کرتا؟ سوال پیدا ہوتا ہے کہ چلو بھائی میری نیت میرے ساتھ، اللہ تو قبول کر لے، لیکن کیوں نہیں قبول کرتا؟ میں اس کے لیے آپ کے ساتھ ایک چھوٹی سی مثال شیئر کروں گی۔ آپ کے پاس کوئی گفٹ آتا ہے، کوئی شخص آپ کو تحفہ دیتا ہے، بڑا خوبصورت پیک کیا ہوا، سجا سمرا، محبت کے جذبات بھی بولتا ہے اور بڑے پیار سے آپ کو دے دیتا ہے۔ آپ کہتے ہیں اس کے اچھے جذبات ہیں، اس نے آپ کو دیا، خوش ہوتا ہے، وہ دیتا ہے، ٹھیک ہے، ایک الگ بات ہوئی۔ دوسری صورت کیا ہے کہ کوئی شخص اپنے ہاتھ میں گفٹ بیگ لے کے آ رہا ہے، آپ نے اس کو دیکھا، اب کیا ہوا کہ وہ آیا تھا کسی اور کے لیے، دینا وہ کسی اور کو چاہ رہا تھا، لیکن سامنا اس کا آپ سے ہو گیا، اور اس کو لگا کہ ارے آپ کے لیے تو کچھ لایا ہی نہیں، اب دوسرے کو دوں گا تو ان کو بھی پتہ چل جائے گا، تو وہ کیا کرتا ہے، آپ بھی سمجھ لیتے ہیں آپ کے لیے، فوراً ہاتھ بڑھاتے ہیں، یہ اس کی کیا ضرورت تھی، کیا تکلف تھا، لوگ کہتے ہوئے پکڑ بھی لیتے ہیں ساتھ چیزیں، آپ نے وہ چیز لے لی۔ بعد میں اگر آپ کو یہ پتہ چلے کہ جو تحفہ آپ کو دیا ہے وہ اصل میں آپ کے لیے نہیں آیا تھا، تھا کسی اور کا، بس وہ شرم شرم میں آپ کو دے دیا، آپ کو کیسا لگے گا؟ خوشی ہوگی؟ آپ کو تو اتنی شرم آئے گی، آپ اس کو فوراً واپس کریں گے کہ بھائی مجھے نہیں چاہیے، مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ آپ کسی اور کے لیے لائے ہیں۔ بس ریاکار جو ہے نا، وہ دینا تحفہ کسی اور کو چاہتا تھا، انسانوں میں بڑا بننا چاہتا تھا، پمپ اینڈ شو چاہتا تھا، لیکن زبردستی وہ اللہ کے ہاتھ میں دینے والا بن جاتا ہے۔ تو ایسا خرچ جب ایک انسان نہیں کرتا تو اللہ کی ذات تو بہت غیور ہے، وہ کیسے اس کو مانے گی؟ اللہ تعالیٰ اس کو قبول نہیں کرتے۔ اسی طرح آپ دیکھیے کہ جو ریاکار ہے نا، وہ سی تھرو کپڑے پہننے والے شخص کی طرح، کپڑے بھی پہن لیتا ہے اور اس کا جسم پھر بھی نہیں چھپتا، یعنی اس نے خرچ بھی کیا، دیا لیا بھی، لیکن اس کے باوجود بھی اس کا جسم نہیں چھپ رہا۔ اللہ تعالیٰ ریاکاری کو یہاں اتنے برے رنگ میں پیش کرتا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ریاکاری کو شرک اصغر کہا، آپ نے فرمایا کہ مجھے تمہارے بارے میں شرک اصغر کا ڈر ہے۔ پوچھا وہ کیا؟ تو فرمایا ریاکاری۔ یہ مسند احمد کی روایت ہے۔ اسی طرح وہ روایت بھی آپ نے سنی ہوگی کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ تین لوگوں سے جہنم کی آگ کو بھڑکائے گا، جس میں ایک عالم ہوگا، علم حاصل کرنے والا، ایک شہید ہوگا اور ایک سخی ہوگا۔ تینوں کو باری باری اللہ تعالیٰ بلا کے پوچھے گا کہ تم نے یہ عمل کیوں کیے، تو وہ کیا کہے گا؟ ہم نے اللہ تیرے لیے کیے، سب تینوں ایک ہی بات کہیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ تو نے جھوٹ بولا، کیونکہ تیرا عمل اس لیے تھا کہ لوگ تجھے قاری کہیں، اور تیرا عمل اس لیے تھا کہ لوگ تجھے شہید کہیں، اور تیرا عمل اس لیے تھا کہ لوگ تجھے سخی کہیں، اور وہ تجھے کہہ چکے، لہٰذا اب میرے پاس تیرے لیے کوئی جگہ نہیں، اور ان تینوں کو باری باری جہنم کے اندر اللہ تعالیٰ ڈال دے گا۔ اللہ اکبر، سوچئے، بہت طویل روایت ہے، صحیح مسلم میں بھی ہے، وقت کی کمی کی وجہ سے روایات نہ میں آپ کو پوری نکو کوٹ کرواتی ہوں، صرف اس کا خلاصہ دیتی ہوں، لیکن انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ آپ کو پوری اکٹھی کسی طرح پرووائڈ کر دی جائیں، تاکہ آپ اس سے بعد میں پورے کو پورا لکھ سکیں۔ لیکن یہاں یہ بات یاد رکھیے کہ ریاکار شخص جو ہے نا، وہ واقعی سب سے محروم شخص ہے۔ ایک تو وہ جو کچھ کرتا ہی نہیں، اور یہ وہ ہے جو کر کے اپنا کیا دھرا ضائع کر دیتا ہے۔ اسی طرح ایک روایت میں آتا ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ریاکاروں کو کہے گا، ان کے پاس جاؤ جن کو دنیا میں تم اپنے اعمال دکھایا کرتے تھے، جا کر دیکھ لو کہ ان کے پاس تم کو جزا ملتی ہے یا بھلائی ملتی ہے، یعنی جو جس کے لیے کرے گا اس کے پاس اس کو پیش کر دیا جائے گا۔ تو انسان کو اپنی نیت کو خالص رکھنا چاہیے، کبھی بھی کوئی خرابی نہ کرے یہ سوچ کر کہ اللہ کو پتہ نہیں چلے گا، اللہ تعالیٰ کو ہر چیز پتہ چل جاتی ہے، اور ایسے لوگ پھر سب کچھ کر کے بھی محروم ہو جاتے ہیں۔ आप देखिए कि जब इंसान अपने माल के लिए, अपने नाम के लिए खर्च करते हैं रियाकारी के लिए, तो नतीजा क्या होता है कि हर साल की शादी पिछले साल की शादी से ज़्यादा महंगी हो जाती है। फिर लोग कहते हैं उसकी शादी कैसी ग्रैंड थी, क्या बड़ी शादी थी। सिर्फ दिखाने के लिए 20-20 डिशें पकाई जाती हैं, कौन खाएगा 20 डिशें? ऐसे लगता है बात शादियों में कि पूरा होटल खड़ा हो गया, और हर तरह की चीज़ें रखी जाती हैं कि शायद ये खा लें शायद ये खाएं। और उन्होंने तो शायद ये रखा होता है ना कि कोई कुछ भी एक खा ले चीज़, लेकिन जाने वाले फिर कहते हैं हमें सब कुछ खाना है, और नतीजा क्या होता है आप जानते हैं। तो इस आयत को समझते हुए हमारा ख्याल क्या होना चाहिए कि रियाकारी और दिखावे से बचते हुए चुपके से अल्लाह के रास्ते में खर्च करने वाले बन जाएं। अब अल्लाह ताला रियाकार की मिसाल के बाद उस शख्स की मिसाल देते हैं जो हकीकत में अपने रब को राजी करने के लिए देता है। आयत नंबर 265 को देखते हैं। वह मसलुल्लसीना युनफिकून अमवालहुम, और मिसाल उन लोगों की जो खर्च करते हैं अपने माल, क्यों? इब्तिगा अमरदातिल्लाह, चाहने के लिए अपने रब की रजा, अल्लाह की रजा तलब करने के लिए अपने माल खर्च करते हैं। इब्तिगा का लफ्ज़ बगी से है, बगा चाहना, जैसे बागी लफ्ज़ भी इसी से ही है। किसी चीज़ को पाने के लिए इंसान बहुत जल्दी करे, यानी बड़े शौक और ख्वाहिश के साथ जब इंसान कोई काम करना चाहे तो उसको इब्तिगा कहते हैं। और मर्दात इल्ला रजामंदी से है, लफ्ज़ रजा से है, मर्दा रुआद वाद जा इसका रूट है। और तस्बीतन का लफ्ज़ सबता से है, साबाता जमाना, मुहकम करना, मजबूत करना। तस्बीत के लिए करते हैं किसकी? मिनन्फुसिहिम, अपने नफ्सों की। यानी कुछ लोग खर्च करते हैं अल्लाह की रजा के लिए और अपने नफ्सों को जमाने के लिए। अपने नफ्स को जमाने के लिए कैसे? कि अपने नफ्सों से माल की मोहब्बत को निकालकर अपने आप को उसके बगैर ही खुश रखने के लिए। छोटी सी मिसाल देती हूँ, मिसाल से मराज एक एक छोटी सी बात करती हूँ जिससे आप समझ सकेंगे इंशाअल्लाह ताला। देखिए, आपने हमजाद का लफ्ज़ सुना हुआ है? हमजाद कहते हैं कि हर इंसान के साथ उसका एक हमजाद होता है, वो जिन्नों में होता है, शैतानों में होता है, क्या होता है इस पे बात आगे जाके इंशाअल्लाह सूरह यूसुफ में हम करेंगे। आप ये समझ लें कि किसी इंसान का जो हमजाद है ना, वो उसका माल है। जैसे हमारी चुटिया गुंथी है ना, बल देते हैं, इसी तरह इंसानों के दिलों में माल की मोहब्बत गुंधी हुई है। यानी आप यूं कह सकते हैं कि अगर माल की मोहब्बत को अलग कर देना तो इंसान अधूरा रह जाता है। आगे जाके पढ़ेंगे, नफ्सों के अंदर बखीली रखी गई, फितरत के अंदर माल की मोहब्बत रखी हुई है। जब फितरत अल्लाह के करीब होती है, सलीम होती है, तो आहिस्ता आहिस्ता माल की मोहब्बत निकलती जाती है। आप इसको यूं समझें कि एक छोटा बच्चा पैदा होता है ना, आप सिर्फ उसके हाथ से कैंडी पकड़ें और उसकी आंखों से आंसू निकल जाएंगे। ये है इस बात की दलील कि इंसान के दिल में कितनी मोहब्बत है। आप बच्चे का ग्लास पकड़ लेना तो वो रोने लगता है। अक्सर जो बच्चे दिन में रोते रहते हैं ना, उसकी वजह ये होती है कि मेरी चीज़ उसने क्यों ले ली। टूटी हुई चीज़ है और दूसरे बच्चे ने छीनी, तो वो ऐसे रोएगा जैसे उसकी हुकूमत किसी ने ले ली। ये वो चीज़ है अल्लाह ने डाली थी, आगे इंशाल्लाह सूरह आले इमरान में भी हम देखेंगे। लेकिन इंसान का जिहाद क्या है कि इस मोहब्बत को खुरचो और बाहर रख दो। बात समझे? कोई ये कहे ना कि मेरे दिल में माल की मोहब्बत नहीं है तो झूठ बोलेगा, क्योंकि ज़ुय्यिना लिन्नासि हुब्बु शहवाति मिनन निसा वल बनीन वल कनातीरिल मुकंतरा। अब हम सब के दिलों में थी बचपन से प्रोई हुई अंदर, जैसे खून वेंस के अंदर है ना, इस तरह माल की मोहब्बत पसी हुई है। आप बचपन में अगर माल की मोहब्बत निकाल दे तो बच्चा अधूरा रह जाए, ये समझें। अल्लाह ताला कह रहे हैं व तस्बीतम मिनान फुसिहिम, बंदे ने करना क्या है, इतना माल अल्लाह के रास्ते में दे, इतना दे कि बिल आखिर वो माल उसका हिस्सा ना रहे। बात वाजह हो रही है? यदि मैं समझा पा रही हूँ वो बात, कि शुरू में एक चीज़ के आप एडिक्टेड होते हैं, आदी हैं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आपने अपने आप को उससे दूर करना है। जैसे लोग नशे के आदी हो जाते हैं, एक वक्त होता है कि अगर आप उनको नशा ना दें तो वो मर जाएंगे क्योंकि उनका जिस्म आदी हो गया। लेकिन एक बंदा वो सोचता है, कहता है नहीं, मैंने नशे की आदत छोड़नी है, तो थोड़ा थोड़ा करके वो अपने आप को उससे दूर करेगा और एक वक्त आएगा कि नशे के बगैर ही उसका जिस्म मजबूत रहेगा। तो ये है तस्बीतम मिन अनफुसिहिम कि माल की मोहब्बत इस तरह अपने दिल से निकालते रहते हैं निकालते रहते हैं कि बिल आखिर माल के जाने से उनकी जान नहीं निकलती, खुश होते हैं। और माल दे ही बंदा तब सकता है जब माल देने से गम और घुटन की बजाय खुशी और फराखी मिले। अगर सिर्फ इस्लाम के लिए देना होता ना कि इस्लाम को फायदा हो या इस्लाम को जरूरत है, तो शायद अबू बकर सिद्दीक भी पूरे घर का माल ना दे पाते और उस्मान गनी 100 100 ऊंट ना देते और हजारों उकिया ना देते। लेकिन याद रखिए, जब बंदा अल्लाह के रास्ते में देता है ना शुरू में, तो ये सोच के देता है कि मैं दूंगा तो सवाब मिलेगा, अल्लाह के रास्ते में होगा, अल्लाह के दीन को फायदा होगा, इस्लाम को फायदा होगा। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो कैफियत आ जाती है कि सवाब एक तरफ रह जाता है, दूसरे को इससे कुछ फायदा हो रहा है ये दूसरी तरफ रह जाता है। उससे बड़ी चीज क्या बन जाती है? तस्बीतम मिन अनफुसिहिम, अपने नफ्स की तस्कीन बन जाती है, अपनी खुशी बन जाती है। और किसी भी नेकी को करने का ये बेहतरीन मियार होता है, वो नेकी आपके दिल की खुशी बन जाए। अगर ये नहीं है ना, तो किसी के कहने पे दे भी दें और बाद में झुलते रहें, और बाद में कि क्या जरूरत थी इतना बड़ा नोट निकाल के देने की, बातों में आ गए आप, इसकी जरूरत नहीं। शौहर देता है तो बीवी उस पर झुर झुर कर रही होती है, और बाज़ बीवियां देती हैं तो शौहर कहते हैं कि अब तुम्हें मैं कम दिया करूंगा क्योंकि तुम बहुत ही देने लग गई। तो दुआ कीजिए कि तस्बीतम मिन अनफुसिहिम वाली कैफियत हमारी बन जाए, अल्लाह की रजा और नफ्स की खुशी। जैसे बंदे का बंदा सफाई पसंद होता है ना, तो वो अपने पास ज्यादा चीजें नहीं रख सकता, वो जितनी निकालता है ना अपने पास से, उतनी उसको खुशी होती है कि घर साफ हो गया, अलमारी साफ हो गई है, फ्रिज साफ हो गई है, इधर इतना खाना पड़ा हुआ है, चलो इसको निकालो, कुछ लोगों को दो जो खाना खा सकें और मेरा कम हो। वो ये नहीं सोचता कि वो खाएंगे तो उनको फायदा होगा या मुझे अजर मिलेगा, वो ये खुश होता है कि मेरी फ्रिज साफ है। यानी इसका ये नहीं मतलब उलट लीजिएगा कि खराब चीजें दे रहा है। यानी तस्बीत को समझिए कि दिल जम जाता है, इस्तकामत आने लगती है। इसी तरह बास कहते हैं कि तस्बीतम मिन अनफुसिहिम से मुराद ये है तस्बीतुल माल। उनको इतना यकीन होता है इस बात का कि जब मैं अल्लाह के रास्ते में दूंगा तो माल और बढ़ेगा, तो लिहाजा वो देकर खुश होते हैं। अब जरा इसकी भी मिसाल सुनिए, बात तो समझ गए ना, ये कौन शख्स है इतने खुले दिल से देने वाला, इतनी ज्यादा दिल की मोहब्बत से देने वाला है। अब इसकी मिसाल के कमसली जन्नतिन, जैसे मिसाल एक बाग की। कहाँ है ये बाग? जन्नतिन बाग को कहते हैं, आप पीछे सुन चुके, जीम नून नून इसका रूट है, कोई जीम नून ता ना लिखे गलत होगा, ठीक है, बाग को कहते हैं। और जन्नत को भी जन्नत इसीलिए भी कहते हैं कि उसमें बहुत से बागात हैं और छुपने का मानी भी आता है, जिन का लफ्ज़ भी इसी से ही है। बहरहाल एक बाग है, कहाँ है ये? बी रबवतिन, बुलंदी पर, बहुत बुलंद है। रबवा का लफ्ज़ जो है ना, ये अगले लेसन में भी आप सुनेंगे इंशाल्लाह, रा बा या से रिबा, जो सूद का टॉपिक है ना, रिबा कहते हैं सूद को अरबी में, वही है ये रबवा, बुलंदी को कहते हैं। और इस्तलाह में रबवा किस बाग को कहते हैं या किस जगह को? वो ऊंचा हमवार मुकाम जहां नहरें बह रही हों, लेकिन नहरों के किनारे इर्द गिर्द की जमीन से ना ऊंचे हों ना नीचे हों, इसलिए ना पानी ऊपर आ सकता हो ना जमीन ऊंची और पानी नीचा हो। यानी बिल्कुल लेवल के ऊपर पानी बह रहा हो, उसके साथ ये चीज आती है। यहाँ मुराद है एक बहुत खूबसूरत बाग जो बहुत बुलंदी पे है। आपको पता है कि जो बाग जितना ऊंचा होता है ना, उसका सब्जा उतना ज्यादा है। इसीलिए ये जो शिमाली इलाके होते हैं ना, नॉर्थर्न साइड्स हैं, या आप जैसे नॉर्वे में देखते हैं तो ग्रीनरी बहुत है। क्यों? क्योंकि ये जमीन का ऊंचा हिस्सा है, ऑक्सीजन ज्यादा होती है, पोल्यूशन कम होती है। तो मुराद ये कि बेहतरीन बाग है। बिरबवतन असा बहा, पहुंचा उसको सौप से, स्वाद वाबा, पहुंच गया। क्या? वा बिलुन, तेज बारिश, जो पीछे लफ्ज गुजर चुका। फआतत उकुलहा, फिर आ गया उसका मेवा। उकुल कहते हैं मेवे को। फल, कोई भी फल हो सकता है, जो भी उसकी चीज थी। मुराद है कि बारिश हुई और बेहतरीन किस्म का फल उग गया। दे फैन दुगना, दो चंद, दो से दुगना, यानी दे फैन बास कहते हैं दो दुगने। एक दुगना क्या होता है? मिसाल है, आप कहें कि टू है ना, तो दो का दुगना क्या होगा? चार, टू इंटू टू फोर। तो यहाँ दे फैन में है दो दुगने। अब एक दुगना क्या था? चार, तो दो दुगने क्या हो गए? बस यही देखना चाहती थी, जिन्होंने आठ कहा वो गलत कहा। दो दुगने क्या है? फोर इंटू फोर, 16। ये आप देख रहे हैं कि इस पूरे सबक में दुगने का दुगना मल्टीपल चल रहा है, यानी दुगने का दुगना, चोखे का चोखा। चोखे का लफ्ज सुने उर्दू में, ये वही है चोखा। चोखा चार से है, तो दे फाइन भी दो दुगने। अब क्या हुआ? यानी आम जितना फल आना था ना, आम तौर पे हो सकता है कि उस बाग में 20 किलो आम लगते हों, लेकिन आप 20 को 4 से कर लें तो उतने आम लग गए। फ़ाइलम युसिब हा वाबिलुन, और अगर इसको बहुत तेज़ बारिश ना भी पहुंचती, यानी बहुत तेज़ बारिश ना भी होती, तो फतल्लुन, तो हल्की हल्की बूंदाबांदी भी काफ़ी थी। तल्लुन कहते हैं छोटे छोटे कतरों वाली बारिश, छोटी बूंदों वाली बारिश, जिसको बूंदाबांदी कहते हैं ना। ये वाबिल का ऑपोजिट है। वाबिल क्या है? कि तेज़ बारिश, बहुत ज़्यादा बहने वाली। और तल्लुन क्या है? बहुत थोड़ी बारिश। अल्लाह ताला कहते हैं कि बहुत तेज़ बारिश ना भी होती ना, तो बहुत थोड़ी बारिश भी काफ़ी थी, क्योंकि नीयत बहुत अच्छी है। वल्लाहु बिमा तअमलून बसीर, और अल्लाह ताला साथ उसके जो तुम अमल करते हो उसको देखने वाला है। अब इस मिसाल को कैसे समझेंगे? ऊपर वाली तो समझ गए ना हम, कि कैसे एक चटियल पत्थर था, उसके ऊपर मट्टी की तह जम गई, बारिश हुई, सब खत्म। अब इसका ऑपोजिट है, बहुत खूबसूरत बाग है। बुलंदी से मुराद क्या है? कि उस बंदे के दिल में अल्लाह को देने की, अल्लाह के रास्ते में देने की बड़ी तलब है, बड़ी तड़प है, दिल की खुशी से देना चाहता है। अच्छा, फिर क्या हुआ? खर्च करता है अल्लाह की रजा के लिए, यानी उसको और कोई नहीं, मतलब किसी से कोई नहीं लेने की नीयत, सिर्फ ये है कि अल्लाह राजी हो जाए और मेरा दिल जम जाए, मेरा नफ्स इस पे मुतमईन हो कि मैंने ये नेकी की। अब ये शख्स इसका बाग इतना ज्यादा फल लेकर आएगा कि दुगने का दुगना हो जाएगा। और अल्लाह ताला कह रहे हैं कि अगर उसको बहुत तेज बारिश ना पहुंचे, तेज बारिश इधर क्या है? खूब माल खर्च करना अल्लाह के रास्ते में, लाखों देना। और कभी बंदे के पास लाखों होते हैं और वो अल्लाह की रजा और तस्बीत कल्ब के लिए दे देता है, लेकिन कभी नहीं होते, बहुत थोड़े होते हैं। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं फतल्लुन, फिर हल्की सी बूंदाबांदी से भी फसल उगेगी। क्या मतलब है? कि असल चीज़ दिल है, नीयत है, इरादा है। बास लोग बहुत मालो दौलत वाले होते हैं, वो अल्लाह की रजा के लिए ढेरों ढेर माल दे देते हैं तो अजर पा लेते हैं, लेकिन बास लोग नीयत बहुत अच्छी रखते हैं, ख्वाहिश भी बहुत है, इरादा भी है ही कुछ नहीं हाथ में, चंद सौ है ही तनख्वाह इतनी कि उसमें से लाखों तो क्या, हजारों भी देने मुश्किल है। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं गम ना करो, फतल्लुन, छोटी सी तुम्हारी नेकी, चंद रियाल, चंद दिरहम, चंद डॉलर, चंद रुपए भी जो तुमने दिए, अल्लाह उसको भी कबूल कर लेगा। क्यों? इसलिए कि वल्लाहु बिमा तअमलून बसीर, उसकी नजर तुम्हारे अमल पे है। इस लफ्ज में खुशी से खर्च करने वाले के लिए खुशखबरी है कि तुमने अच्छी नीयत से खर्च किया ना, थोड़ा भी किया तो अल्लाह को पता है, और बुरी नीयत से खर्च करने वाले के लिए इसमें तख़वीफ है, खौफ है। आप कह सकते हैं कि अच्छी नीयत वाले के लिए तरगीब है, रग़बत दिलाई है, और बुरी नीयत वाले के लिए तख़वीफ है, खौफ दिलाया है कि देखो फिर जो नीयत की है अल्लाह उसको जानता है। क्या पता चला? कि कुछ लोग मुट्ठी भर खजूरें भी अल्लाह के रास्ते में देकर उस मुकाम पे पहुंच जाते हैं जहां लोग पूरे घर का सामान दे के पहुंचते हैं।